ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 8, दिल्ली प्राप्ति। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस समय पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जी चौहान अजमेर में राज करते थे, उस समय दिल्ली का शासन तोमर वंश के राजा अनंगपाल के हाथों में था। प्रथम अनंगपाल द्वारा दिल्ली में तोमर वंश स्थापित हुआ और उस समय से लेकर दूसरे अनंगपाल के बीच लगभग 20 राजाओं ने दिल्ली में शासन किया। पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर वंश के अंतिम अनंगपाल थे। दिल्ली के शासन में बहुत उलट फेर होते होते अंत में शासन इनके हाथों में आया और इस समय दिल्ली ने फिर नया वेश धारण करके अपनी प्रतिभा दिखाई। राजा अनंगपाल के शासन काल की किसी विशेष घटना का पता नहीं लगता है। उनके दिल्ली बसाने के समय की कहानी पहले ही बताई जा चुकी है, परंतु विचार करने से यह पता चलता है कि दिल्ली बसाने वाले प्रथम अनंगपाल थे और रासों में भ्रमवश दूसरे का अनंगपाल नाम लिखा है। राजा अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं। एक का विवाह सोमेश्वर जी से तथा दूसरे का कन्नौज के राजा जयचंद के पिता से हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पृथ्वीराज के दादा बीसल देव जी ने दिल्ली पर एक बार आक्रमण किया था। राजा अनंगपाल हार गए थे और उन्होंने अपनी छोटी पुत्री की शादी बीसल देव जी के पुत्र सोमेश्वर जी से कर दी थी। इस विवाह बंधन से दोनों राज्य दुश्मनी भूलकर मित्रता के बंधन में बंध गए। इसके बाद की घटनाओं का हमारी इस जीवनी से संबंध है। उस समय अनंगपाल तथा सोमेश्वर में घनिष्ठ प्रेम था। पृथ्वीराज कभी अजमेर में रहते थे, कभी दिल्ली में। राजा अनंगपाल बचपन से ही उनके गुणों पर मुग्ध थे और जानते थे कि भविष्य में यह एक होनहार मनुष्य होगा। इसीलिए जब वे बूढ़े हो गए और उन्होंने इस संसार से एक प्रकार से विरक्त होकर पृथ्वीराज को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, तो इसी विचार के अनुसार उन्होंने पृथ्वीराज को इस बात की सूचना देकर अजमेर से बुला लिया। जिस समय दूत यह पत्र लेकर अजमेर गया, उस समय पृथ्वीराज तथा सोमेश्वर जी दोनों बहुत खुश हुए, परंतु साथ ही साथ इस राज्य प्राप्ति में एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाने का डर भी था। इसीलिए इस बारे में विशेष विचार की जरूरत आ गई। पृथ्वीराज ने अपने सामंतों को इकट्ठा करके सभा बुलाई। सभा में अनंगपाल का पत्र पढ़ा गया और उस पर विचार होने लगा। सबसे अधिक विचार करने की बात यह थी कि हालांकि राजा अनंगपाल पृथ्वीराज को दिल्ली का शासन भार दे रहे थे, परंतु उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी उनका बड़ा नाती कन्नौज का राजा जयचंद था। राज्य जयचंद को ना मिलकर पृथ्वीराज को मिल रहा था, जिससे आपस में एक भयानक दुश्मनी होने की संभावना दिखाई दे रही थी। यदि विचार किया जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि भारत में हिंदू स्वतंत्रता सूर्य के अस्त होने के कारणों में पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन प्राप्त होना भी एक कारण था। जैसी होनी होती है वैसी ही बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसी विचार के अनुसार ना तो राजा अनंगपाल ने ही इस बात पर कुछ विचार किया और ना ही पृथ्वीराज या सोमेश्वर जी अथवा अन्य सामंतों ने ही। इन सब ने राजा अनंगपाल से अचानक ही प्राप्त हुए इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना ही कर्तव्य समझा और इसी अनुसार पत्र भी लिख दिया। फिर कुछ दिनों बाद ही पृथ्वीराज बहुत ठाट बाट से तथा सामंतों को लेकर दिल्ली की ओर चल दिए। पृथ्वीराज के दिल्ली पहुंचते ही उत्सव मनाया जाने लगा और संवत 1138 मार्गशीर्ष शुक्ल 5 गुरुवार को पृथ्वीराज दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठाए गए। दूसरे दिन दिल्ली तथा अजमेर की संयुक्त सेना के बीच बहुत धूमधाम से पृथ्वीराज की सवारी निकाली गई और शाम के समय दरबार लगा। पृथ्वीराज राजगद्दी पर विराजमान हुए। दोनों राज्यों के प्रधान कर्मचारियों ने दरबार में आकर बधाई दी और उन्हें तोहफे भी दिए। दूसरे दिन अनंगपाल सबसे विदा होकर अपनी धर्म पत्नी सहित बद्रिकाश्रम के लिए चल दिए और पृथ्वीराज नीति तथा न्यायपूर्वक दिल्ली राज्य का शासन करने लगे।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।